मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे जय राधा माधव कुंज बिहारी
सब लोग गाइए
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जयो जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश्च श्रीरूपं सकृजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब बल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च सत्यं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महद्भिः यैमा पुरो विभू निर्मायशेते यदमूष पूरुषः भुङ्क्तेर्गुणानशो दशषोडशात्मक सोलङ्कश्रेष्ठ भगवान वचांसि मे।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुनिए, सब लोग बैठ जाइए, शांति रखिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, सत्व संजायते ज्ञानम। ज्ञान तब प्राप्त हो सकता है जब सत्व गुण में हो, और सत्व गुण का अर्थ होता है शांति। ओम शांति। बैठिए सब लोग। हरि बोल। बच्चे लोग ध्यान से सुनिए सब लोग, क्योंकि एक और भाव का अभाव है और दूसरा माया का प्रभाव है। वैसे ही हम इस संसार में डिस्टर्ब होते आते हैं। ऊपर से यहाँ पर यदि अशांति हो तो हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर कुछ क्षण पहले यहाँ पर कलयुग पावन अवतार करुणा वरुणालय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया गया। साथ ही साथ इस जगत के नाथ जगन्नाथ जी का पुष्प अभिषेक किया गया। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मिलित अवतार है, और जगन्नाथ जी भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इस संसार में कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि अवतार को सब लोग जानते हैं, क्योंकि यह सब अवतार प्रसिद्ध है, प्रचलित है, फेमस है। परंतु चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रच्छन्न अवतार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक गुह्य प्रच्छन्न अवतार है। इसे समझना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि कलयुग में भगवान की प्राप्ति करनी है तो बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर अवसर है, प्रभु जी ने अपने घर पर आज जगन्नाथ जी का आगमन किया है। जगन्नाथ जी के बारे में मैं आपको बताऊं, जगन्नाथ जी इस संसार में हम इस पूना शहर के एक छोटे से नगर के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। इस छोटे से कमरे से बड़ा है यह शहर, यह पूना शहर से बड़ा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है भारत में, और भारत है एशिया में, और एशिया है इस पृथ्वी में, यह पृथ्वी है एक ब्रह्मांड में, ऐसे एक नहीं ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के नाथ जगन्नाथ है। नाथ का अर्थ आप जानते हैं, स्त्रियां माताएं नाक में नथनी पहनती हैं। नाथ का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सभी जीवों के नाथ है, जगत के नाथ है। नाथ का अर्थ होता है भागवत के षष्ठ स्कंद में यमराज जी इसका वर्णन करते हैं। जैसे बैल चलाने वाला, यहां से कई लोग गांव से है, बैल चलाने वाला बैल के नाक में रस्सी डालकर वह रस्सी अपने हाथ में पकड़ता है, जब चाहे उस बैल को रुका सकता है और जब चाहे उस बैल को घुमा सकता है। उस बैल के नाक में नथनी के रूप में रस्सी डाली गई है। ठीक उसी प्रकार यह अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत अनंत कोटि जीवों के नाक में माया रूपी रस्सी डालकर भगवान अनंत कोटि जीवों का संचालन करते हैं। इसलिए कहते हैं एकले ईश्वर कृष्ण हार सब भृत्य। इस संसार में ईश्वर केवल एक ही है, वो है कृष्ण। और कृष्ण के अलावा और जितने भी हैं सब भृत्य, नौकर है, सेवक है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाहे ऐसे नाचाए ते तैसे करे नृत्य। वे जैसे नचाना चाहते हैं इस संसार के लोग वैसे नाचते हैं। प्रभुपाद जी इस बात को स्वीकार किए हैं। प्रभुपाद जी जब भारत से अमेरिका प्रचार करने जा रहे थे तब अपनी कविता में लिखे हैं, बड़ो कृपा कैल कृष्ण अधमेर प्रति। प्रभुपाद जी भगवान से कहते हैं नाचाए नाचाओ अधमेर प्रति। हे प्रभु, आप जैसे मुझे नचाना चाहते हो नचाइए। भगवान इस संसार के सभी जीवों को नचाते हैं, और भगवान नहीं, भगवान की शक्ति माया इस संसार के जीवों को नचाती है। अभी कुछ क्षण के बाद भगवान का बहुत ही सुंदर संकीर्तन होगा। तो इसमें दो बात है, यदि कोई व्यक्ति भगवान के सामने भगवान के नाम से नाचता है तो उस व्यक्ति को माया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान के सामने नहीं नाचता है, तो निश्चित रूप से उसे भगवान की माया के सामने नाचना होगा। भगवान की माया के सामने नाचने का अर्थ क्या है? भगवान की माया के सामने नाचने का अर्थ है उस व्यक्ति को या तो अपनी पत्नी के वश में नाचना होगा, या तो अपने मालिक के वश में नाचना होगा, या तो अपने पुत्रों के वश में नाचना होगा। नाचेगा जरूर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नारी। नारी के वश में होकर, माया के वश में होकर नर मनुष्य ऐसा बन जाता है। दृष्टांत देते हैं, जैसे मदारी के हाथ में बंदर नाचता है। यदि कोई भगवान के सामने स्वतंत्र रूप से नहीं नाचता है तो उसे माया के सामने नाचना होगा। इसलिए जगत के नाथ के सामने हम सबको उनका नाम लेते हुए नाचना चाहिए। तो मैं कह रहा था जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं और अपनी माया के द्वारा सबको नचाते हैं। तो उस जगन्नाथ जी का आज अभिषेक किया गया, प्राण प्रतिष्ठा उनका आज प्रतिष्ठित किया गया। शास्त्रों में कहा गया है, हयशीर्ष पुराण में कहा गया है, कोटि जन्म गतम पापम। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों से पाप करता आया हो, कोटि जन्म गतम पापम स्वल्पम यद वा गुरु। पाप कई प्रकार के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों से छोटे या बड़े कई सारे पाप क्यों न किए हो, संस्थाप्य मधु घातिनाम। यदि कोई व्यक्ति भगवान का विग्रह अपने घर पर लाता है तो तत् सर्वम भस्म सात कुर्यात। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पे भगवान का विग्रह की स्थापना करता है तो करोड़ों करोड़ों जन्मों से किया गया पाप जलकर भस्म हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर भगवान का विग्रह लाकर यथा विधि, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, उस प्रकार उस भगवान की सेवा पूजा करता है, तो विष्णु धर्म में कहा गया है, स्थापिताम प्रतिमाम विष्णु सम्यक संपूज्य मानव यम यम पार्थ यते कामम तम तम प्राप्नोति उत्तमम। उस व्यक्ति की समस्त कामनाएं समस्त इच्छा पूरी होती है। और भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर भगवान की सेवा पूजा करता है तो कहते हैं एक नहीं, उस व्यक्ति की 21 पीढ़ी भगवान के धाम में चली जाती है और नित्य भगवान के धाम में वास करती है। इतना ही नहीं, साक्षात भगवान अपने मुख से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति मेरा अभिषेक करता है, उस अभिषेक में उस व्यक्ति ने जितना जल जितना प्रवाह बहाया है, उस प्रवाह की जितनी बूंद है, बूंद नहीं उसका जितना कण है, उतने कण वर्षों तक उसे स्वर्ग में वास मिलता है। और स्वर्ग में रहने के बाद वो मेरे धाम में आकर रहता है। तो भगवान के श्री विग्रह को अपने घर पर लाना, उनका अभिषेक करना और उनकी पूजा करना, ये एक बहुत बड़ी भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के करुणा वरुणालय पावन अवतार सनातन गोस्वामी को भक्ति के 64 अंग का वर्णन किए। उन 64 अंगों में मुख्य 5 अंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सनातन, यदि कोई व्यक्ति भक्ति में केवल 5 कार्य करे, और 5 भी नहीं, इस 5 में से एक कार्य वह भी बहुत कम मात्रा में करे, फिर भी वह कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और वह 5 कार्य है, भगवान के भक्तों का संग करना, नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना, नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, और भगवान के पवित्र धाम में वास करना, और 5वां है भगवान के अर्च विग्रह की सेवा पूजा करना। यदि कोई व्यक्ति भगवान के अर्च विग्रह की थोड़ी भी बिना अपराध के सेवा पूजा करता है तो बहुत कम क्षणों में उसे भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। और कलयुग में साक्षात भगवान हमें दर्शन नहीं देते हैं, कलयुग में भगवान अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसलिए कलयुग में यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो उसके अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में कई लोग कहते हैं कि आप लोग हरे कृष्ण करते हो, क्या कभी देखा है कृष्ण को? क्या कभी तुम्हारे सामने आए? क्या कभी वो तुम्हारे साथ बातचीत किए? एक बार मैं बंबई में चर्च गेट से विरार जा रहा था, मैं ट्रेन के गेट के ऊपर खड़ा था और मैं भगवान के नाम का जप कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मां मंत्र का जप कर रहा था। उतने में एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर कहा कि मैं देखता हूं कि तुम रोज हरे कृष्ण करते हो, क्या तुम हरे कृष्ण किया करते हो? क्या कभी कृष्ण तुम्हारे सामने आए? मैंने कहा, कृष्ण अब तक मेरे सामने नहीं आए, परंतु कृष्ण को सामने प्रकट करने के लिए मैं ये महामंत्र जप रहा हूं। क्या आप खाली फोकट महामंत्र जप रहे हो? सब व्यर्थ है, कृष्ण है ही नहीं। यदि कृष्ण होते तो हमारे सामने दिखते, कृष्ण मुझे दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम नहीं मानते हैं कृष्ण को। मैंने भगवान की प्रेरणा से मेरे मन में एक विचार आया, मैंने उसे कहा ठीक है, मान लिया आपकी बात को। मैंने उसे कहा कि ये ट्रेन चलाने वाला कोई है या नहीं? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा ये ट्रेन चलाने वाला कोई नहीं है, ये ऑटोमेटिक चल रही है, और ट्रेन चल रही थी। तो वो कहता है नहीं, ट्रेन चलाने वाला मोटरमैन है। मैंने कहा नहीं, यदि ट्रेन चलाने वाला होता तो मुझे यहां पर दिखता। उसने कहा भाई साहब, यदि आपको ट्रेन चलाने वाले को देखना है तो इस डिब्बे से नीचे उतरकर आप अगले डिब्बे में जाइए, और अगले डिब्बे में जाकर देखिए, वो ट्रेन चलाने वाला आपको दिखेगा। मैंने उसे इतना ही कहा कि भाई साहब, एक तुच्छ पंच महाभूत से बने हुए शरीर ट्रेन चलाने वाले को देखने के लिए ट्रेन से उतरकर आगे जाने की आवश्यकता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक ड्राइवर को देखने के लिए कुछ चलने की आवश्यकता है, तो भगवान कृष्ण को देखने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आज और अभी हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, परंतु उसको प्रकट करने के लिए कुछ विधि है। भागवत में सूद गोस्वामी कहते हैं भगवान तीन फेज में तीन स्वरूप में रहते हैं, वदन्ति तत् तत्व विदः तत्वम यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान का पूर्ण स्वरूप उनके धाम में गोलोक धाम वृंदावन में है, और वही भगवान इस संसार के सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, और वही भगवान इस संसार के कण कण में उपस्थित है। उस भगवान को प्रकट करना है तो आज भी प्रकट हो सकते हैं, परंतु कुछ विधि होती है, कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के छठे अध्याय में कहते हैं कि यथाग्नि मेदस्य घृतम च गोषु, वे बहुत सुंदर दृष्टांत ब्रह्मा जी देते हैं कि यथा अग्नि मेदस्य, जैसे एक लकड़े में अग्नि होती है। अब लकड़ा छोड़िए, दिया सली आप जानते हैं, रोज आप इसका यूज करते हैं। दिया सली में अग्नि है, दिया सली को जलने के लिए बाहर से अग्नि की आवश्यकता नहीं है। दिया सली की जो लकड़ी है उसमें निश्चित रूप से अग्नि है, परंतु उस दिया सली से अग्नि को यदि प्रकट करना है तो कुछ विधि है। विधि क्या है? उसे माचिस के बाजू में जो दिया गया है उसके साथ घिसना होगा। यदि कोई अपने हाथ के साथ घिसने लगे या जमीन के साथ रगड़ने लगे तो वह अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति कहे अरे ये दियासली में अग्नि है ही नहीं, परंतु उसकी मूर्खता है। दियासली में अग्नि है, उसे प्रकट करने के लिए कुछ विधि। ठीक उसी प्रकार वे दृष्टांत देते हैं, जैसे गाय में दूध। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये गाय है और इस गाय में दूध है, आप दूध निकाल लो। इस संसार में कई लोग जानते हैं कि भगवान है और भगवान को प्रकट भी किया जा सकता है, परंतु भगवान को प्रकट करने की विधि नहीं जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति को कहा जाए ये गाय है और गाय में दूध है, आप निकाल लो। यदि वो व्यक्ति मूर्ख है तो क्या करेगा? गाय को काटेगा और काट कर देखेगा तो दूध नहीं मिलेगा, आएगा कि इसमें दूध तो नहीं है। गाय में दूध है, परंतु उस दूध को निकालने के लिए कुछ विधि है। विधि क्या है? उस गाय को पहले घास खिलाइए, जब वह घास खा लेती है तब उसके थन में दूध आ जाता है। और सबसे पहले गाय के बछड़े को उसके पास भेजिए, जब बछड़ा गाय के स्तन को स्पर्श करेगा, गाय को वास्तविक भाव उमड़ेगा और गाय अपना सारा दूध अपने स्तन में भेज देगी, और बछड़ा जब दूध पी लेगा बाद में वह दूध हम निकाल सकते हैं। गाय में दूध है परंतु उसे निकालने की विधि। ठीक उसी प्रकार इस भूमि में, इस जमीन में बहुत सारा अन्न है, बहुत सब्जी है, परंतु उस सब्जी को निकालने की विधि है। हम सब जानते हैं, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये बाजू की जमीन में आप आलू निकाल सकते हो, तो मूर्ख व्यक्ति जाएगा और जाकर उस जमीन में इतना खोदेगा, 1 किलोमीटर खड्डा कर देगा और आएगा कि इतना मेहनत करने के बाद भी आलू नहीं निकले। मेहनत की परंतु उसकी विधि ठीक नहीं थी। उस जमीन में आलू है परंतु आलू को प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है। विधि क्या है? उस आलू के बीज को डाला जाएगा, उसमें सिंचाई की जाएगी और कुछ दिनों के बाद उससे आलू प्रकट हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान इस संसार में है, हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, परंतु प्रकट करने की कुछ विधि है। और वह विधि क्या है? वह विधि है भगवान के नाम का कीर्तन करना, और भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना। हम प्रतिदिन भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। ये भगवान को प्रकट करने की विधि है। और इसके अलावा यदि व्यक्ति कितना भी उपाय करता है, कितना भी परिश्रम करता है, तो उसका सारा परिश्रम फैल जाएगा। तो यथा योग्य विधि के अनुसार भगवान के अर्च विग्रह की पूजा और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। आज जगन्नाथ जी का आगमन किया गया है प्रभु जी के घर पर। आप सबको प्रश्न होता होगा, जगन्नाथ जी यहाँ पर है, जगन्नाथ जी का मुख ऐसा क्यों है? बड़ी बड़ी आंखें हैं और हाथ बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं और पांव तो है ही नहीं, जगन्नाथ जी ऐसे क्यों है, प्रश्न होता है। भगवान कृष्ण को हम देखते हैं, दो हाथ हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं, बहुत सुंदर चरण है, परंतु जगन्नाथ जी ऐसे रूप में क्यों है? जगन्नाथ जी का इस रूप में आना, इसके पीछे बहुत बड़ी कथाएं हैं। ये जगन्नाथ जी और कोई नहीं, जगन्नाथ जी साक्षात कृष्ण है। और कृष्ण लीला में आज से 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण लीला में कृष्ण दो बार इस जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए थे। कथा तो बहुत लंबी है, समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए संक्षिप्त में ही मैं आपको बता दूं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अपने गोलोक धाम के नित्य प्रेमी हैं, परंतु वे अपने प्रेम का आस्वादन करने के लिए, विप्रलंब रस का आस्वादन करने के लिए वे इस संसार में आते हैं। इस संसार में आकर राधा और कृष्ण ने बहुत बहुत लीलाएं की और उस लीला में और रस प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का वियोग हुआ। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। जन्म लेते ही उसे गोकुल लेकर गए वसुदेव जी, और गोकुल में 11.5 वर्ष के लिए भगवान श्री कृष्ण रहे। उस 11.5 वर्ष में भगवान ने बहुत बहुत मधुर लीला की है, बहुत लीलाएं हैं। प्रभु जी की इच्छा है आप लीला कहिए, तो सब लीला तो नहीं, एक लीला मैं आपको कह दूं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में प्रेमी हैं, और जब जहां प्रेम होता है वहां रूठना मनाना इत्यादि होता रहता है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रेम का लक्षण है शांति अव्यर्थ कालोत्तम निराष्टि मान शून्यता। जब प्रेम गाढ़ा होता है तो उसमें रूठना मनाना इत्यादि होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में बहुत प्रेमी हैं, परंतु प्रेम की उच्च अवस्था में मान लीला भी होती रहती है। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सभी गोपियों को परेशान करने के लिए बरसाना चले गए। बरसाना श्रीमती राधा रानी का गांव है, और बरसाने से कई सारी गोपियां मथुरा में जाती थी दूध और दही बेचने के लिए। तो बरसाना से मथुरा जाने के लिए एक छोटा सा सांकड़ी खोर जिसे कहा जाता है, एक छोटा सा रास्ता था जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति पसार होकर जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी टीम को लेकर उस पतली सी रास्ते में, पतली सी गली में जाकर खड़े रह जाते थे। जब गोपियां मक्खन दूध दही लेकर आती थी तब कृष्ण और सभी ग्वाल बाल पीछे से उठकर पत्थर का वार करते थे और गोपियों की सभी मटकियों को फोड़ देते थे। सभी गोपियां दूध और दही से बिल्कुल अभिषेक उनका हो जाता था, जैसे भगवान का किया गया। सभी गोपियां परेशान हो जाती थी, कृष्ण को डांटती थी, कृष्ण तुम ऐसा मत करो। कृष्ण ने कहा ऐसा ही करेंगे। कृष्ण ने कहा कि यदि आपको हमसे बचना है तो हमें टैक्स दो। तब गोपियां कहती हैं, कि ये बरसाना क्या तुम्हारे बाप का है? भगवान श्री कृष्ण गोकुल के हैं और बरसाना में आकर बरसाने वालों से ही टैक्स मांग रहे हैं, तो क्या तुम्हारे बाप का है ये बरसाना? भगवान को उस गाली में बहुत आनंद आता है। कहते हैं जो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ब्रह्म स्तुति ओम जय जगदीश हरे में उतना आनंद नहीं है जितना आनंद वैसी ब्रज की मीठी गारी। भगवान कहते हैं जितना आनंद मुझे ब्रजवासी लोगों की गाली में आता है उतना जय जगदीश हरे में नहीं आता है। भगवान स्पेशल गोपियों के मुख से गाली सुनने के लिए तो जाते थे। क्या तुम्हारे बाप का है यह बरसाना? भगवान कहते हाँ हमारे बाप का है, तुम्हें टैक्स देना होगा। गोपियां कहती हम नहीं देंगी, देना होगा नहीं देंगी। भगवान श्री कृष्ण उनकी मटकी फोड़ देते थे, सबको परेशान कर। गोपियां कृष्ण को कहती थी कृष्ण यदि तुम ऐसे करते रहे तो हम कंस को जाकर कह देगी, वो तुम्हें बहुत डांटेगा और मारेगा। कृष्ण कहते थे कंस अरे कंस मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तुम देखती रहना, एक दिन कंस नहीं कंस के साथ पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा। करो कंस निर्वंश मिट दो नाम निशानी रे, तुम देखती रहना पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा, ये कंस मेरा क्या बिगाड़ेगा। इस प्रकार कृष्ण और सभी गोपियों के बीच में आपस में तकरार होती थी। बहुत दिन ऐसा चला, सभी गोपियों ने बरसाना की गोपियों ने एक जगह पर मीटिंग की और राधा रानी को बुलाया कि हे राधे ये कृष्ण आकर हमें बहुत परेशान करता है, अब कुछ करना चाहिए। उस दिन सैकड़ों मात्रा में गोपियां उस रास्ते से आई और कई गोपियां छुप गई और कृष्ण के साथ तो बहुत कम लड़के थे। जब कृष्ण प्रतिदिन की तरह गोपियों के सामने उसे परेशान करने के लिए आए, ये तो बहुत सारी गोपियां थी, सभी गोपियां कृष्ण को घेर कर सभी ग्वाल बाल सखा को पकड़ लिया और चार चार पांच पांच गोपी एक एक कृष्ण के सखा को पकड़ पकड़ कर पीटने लगी। सारे सखा वहां से भाग गए लेकिन कृष्ण नहीं भाग सके। मधुमंगल इत्यादि सखा स्तोक कृष्ण जो थे ये सब भाग गए और सबने कहा कि हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा सरदार तो कृष्ण है। चोराग्य ग्रमणम पुरुषम नमामि, ये कृष्ण चोरों का सरदार है। तब कृष्ण को पकड़ा जाता था, पूरी जितनी भी गोपियां थी सबके बीच में कृष्ण बेचारे भोले बनकर खड़े रह जाते थे। कृष्ण के हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए और पेड़ के साथ बांध दिया गया। अब सारी गोपियां कहने लगी अब इसका क्या किया जाए। कृष्ण बहुत मासूम अपना चेहरा बनाकर कहते हैं कि मुझे छोड़ दो। गोपियां ने कहा कि अब हम नहीं छोड़ने वाली। राधा रानी ने कहा सबसे पहले इसके कपड़े उतार लो और इसको गोपी के कपड़े पहनाओ। बेचारे भोले कृष्ण को सखी गोपी के कपड़े गोपी ड्रेस पहनाया गया। फिर एक सखी ने कहा कि इसके ऊपर एक मक्खन का मटका रखो। कृष्ण के ऊपर मक्खन का मटका रखा गया और चार पांच गोपी ने कहा बोलो दही ले लो दही ले लो बोलो। अब कृष्ण बोलने लगे दही ले लो बेचारे भोली सी सूरत करते हुए। फिर एक गोपी आई पत्थर लिया और पत्थर लेकर जोर से उस मटकी को मारा, सारा मक्खन कृष्ण के ऊपर। कृष्ण ने कहा हाथ जोड़कर कृष्ण ने कहा कि अब मुझे छोड़ दो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, छोड़ दो। सभी गोपियों ने कहा हम कौन होती है छोड़ने वाली, इस ब्रज की वृंदावनेश्वरी, इस ब्रज की ईश्वरी श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी यदि तुम्हें माफ कर दे तो हम तुम्हें छोड़ देगी। कृष्ण ने कहा ठीक है मुझे राधा के पास तो जाने दो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पास आए और राधा रानी के पास आकर जैसे ही कृष्ण ने कहा कि हे राधे राधे आज के बाद ऐसी गलती में कभी नहीं करूंगा, भगवान का यह वाक्य पूरा नहीं हुआ तब तो राधा रानी ने अपना हाथ कृष्ण के मुख पे रख दिया। कृष्ण ऐसा मत बोलो, यदि तुम इस प्रकार की लीला नहीं करोगे तो हम लोग जी नहीं पाएगी। वास्तव में राधा रानी और गोपियों को इस लीला में आनंद आता था, दुखी नहीं होती थी। संसार के लोग पाखंडी लोग कहते हैं, एक ऐसा संप्रदाय है एक ऐसा मत है, लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारे भी भगवान बनेंगे परंतु फिलहाल वो नरक में है। जब पूछते हैं कृष्ण नर्क में क्यों है तो कहते हैं कृष्ण बहुत चोरी करते थे इसलिए वे नर्क में है। अब क्या बताएं इस मूर्खों को, वास्तव में कृष्ण का चोरी करना भी वो दूसरों को आनंद करने के लिए चोरी करते हैं। और यदि तत्व से देखा जाए तो चोरी किसे कहते हैं? चोरी उसे कहते हैं कि दूसरों का माल उसे पूछे बिना हम हमारे पास ले लें। इस संसार में जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होता है। संसार का एक एक कण भगवान का है और भगवान वह रख ले, ये कोई चोरी नहीं है, ये तत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर लीला होती थी, मान लीला भी बहुत होती थी। राधा रानी और कृष्ण का अगाध प्रेम। एक दिन की बात, श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर अलंकार, बहुत सुंदर मेकअप करके, असल में राधा रानी को मेकअप करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह तो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी कहते, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव कृष्ण को देखकर लट्टू हो जाते हैं परंतु वह कृष्ण राधा रानी के पीछे लट्टू हो जाते हैं। इतनी सुंदर श्रीमती राधा रानी है और जब वह बहुत ही सुंदर अलंकार धारण करती है, बहुत सुंदर बिंदिया, सुंदर साड़ी पहनकर जब कृष्ण के सामने आई, राधा रानी ने कृष्ण को कहा, कृष्ण बताओ आज मैं कैसी लग रही हूं? तो कृष्ण ने इतना ही कहा कि राधे क्या बताऊं, आज तो तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान लग रहा है, तुम्हारे सिर पर जो बिंदी लगी है वह चंद्रमा के समान है, तुम्हारा तेज चंद्रमा के समान है, मुझे तो लगता है 10-15 चंद्रमा तुम्हारे शरीर में ही अट गए हैं। इतना कृष्ण बोले तब तो राधा रानी रूठ गई। राधा रानी को लगा कि ये मुझे चंद्रमा चंद्रमा इसलिए कह रहा है क्योंकि ये चंद्रावली से मिलकर आया है। अब ये चंद्रावली कौन है यह भी जानना होगा। कृष्ण ब्रज में कई सारी गोपियां हैं, उस गोपियों में दो ग्रुप हैं, एक श्रीमती राधा रानी का ग्रुप और एक चंद्रावली का ग्रुप। और चंद्रावली और राधा रानी के बीच में बहुत ईर्ष्या और बहुत होड़ होती है। ये हमारे जगत की तरह नहीं, आध्यात्मिक जगत की। तो जब कृष्ण ने कहा कि चंद्रमा जैसा आपका सिर है, बिंदिया चंद्रमा जैसा है, चंद्रमा की चांदनी की तरह तुम्हारी आभा है, राधा रानी रूठ गई, लगता है चंद्रावली से मिलकर आए। कृष्ण ने बहुत मनाया, बहुत मनाया। आप बरसाना में जाओ, मानगढ़ के बाजू में एक मोर कुटीर है। कृष्ण मोर बनकर राधा रानी के सामने नाचने लगे, बहुत प्रसन्न करने का प्रयास किया परंतु राधा रानी नहीं मानी, मनाते रह गए, राधे राधे मैं चंद्रावली से मिलकर नहीं आया हूं, आप रूठो मत, मान जाओ, परंतु नहीं मानी। राधा रानी ने शाम को 5 बजे से मान खाना शुरू कर दिया था, दूसरा दिन सुबह हो गया। ललिता और विशाखा श्रीमती राधा रानी को मनाने लगी कि राधे कम से कम हमारे ऊपर नहीं तो कृष्ण के ऊपर तो तरस खाओ, वे अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आते हैं और इतना इतना तुम्हें मनाते हैं, ये चंद्रमा ढल गया, सूरज उगने को आ गया, इतना समय बीत गया परंतु राधा रानी तुम्हारा मान कम नहीं हुआ। इस संसार में रूठा जाता है पर लेकिन कृष्ण के सामने कोई रूठता है? अरे कृष्ण के पास जाने के लिए लोग तड़पते रहते हैं, उस कृष्ण के लिए तुम रूठ रही हो? कृष्ण कोई रूठने की चीज है? राधा तुम मान जाओ। जब बहुत बहुत कहते थे फिर भी राधा रानी नहीं मानती थी। अंत में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कहते हैं कि हे राधे, राधे मैं ईश्वर हूं, सर्वशक्तिमान हूं और जितने भी अवतार हुए मुझसे हुए। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, राम के रूप में आया, 10 सिर वाले रावण को मार दिया, वामन बनकर आया तो 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। हे राधे, हिरण्यकश्यप को मारने में, रावण को मारने में और ब्रह्मांड को नापने में उतनी तकलीफ मुझे नहीं हुई थी जितनी तकलीफ मुझे तुम्हें मनाने में हो रही है। हे राधे, यूं तो मैं इस संसार का ईश्वर हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ हूं, परंतु राधे तुम्हारे मान के सामने आज मैं हार गया। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सामने झुक जाते हैं। इस प्रकार से राधा रानी रुठती है और कैसे भी करके कृष्ण उसे मनाते हैं। एक दिन की बात, राधा रानी कृष्ण के पास आई और कृष्ण को कहने लगी कि कृष्ण तुम बंसरी बहुत सुंदर बजाते हो। और वास्तव में कृष्ण जब बंसरी बजाते हैं तो इस संसार की प्रकृति को उल्टा कर देते हैं। जो पानी बहता है भगवान की बंसरी जब बजती है तो वह पानी जड़ पत्थर बन जाता है और जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं। आज भी चरण पहाड़ी वृंदावन में जाकर देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बंसरी बजाते हैं तो कहते बाम बाहु कृत बाम कपोलो। जिस ब्रह्मांड की एक शक्ति पर अनंत कोटि ब्रह्मांड खड़े हैं, भगवान की बंसरी बजने पर वो भगवान मुड़ जाते हैं। देखते कृष्ण को ऐसे मुड़े हुए। और इतना ही नहीं, जब भगवान की बंसरी बजती है तो जो गाय और बछड़े सुबह 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 घास खाते हैं, घास खाते खाते जब कृष्ण की बंसरी सुनते हैं तो वह घास मुंह में ही रह जाता है। न तो वह उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। चित्र के समान चित्रवत वह बन जाता है। भगवान की बंसरी में इतना आनंद। राधा रानी ने कृष्ण को कहा कृष्ण तुम बहुत सुंदर बंसरी बजाते हो, मुझे बंसरी बजाना सिखाओ। कृष्ण ने कहा ये कौन बड़ी बात है, मैं तुम्हें बंसरी बजाना सिखा दूंगा लेकिन तुम भी मुझे एक चीज सिखाओ। राधा रानी ने कहा ठीक है, क्या सीखना है बोलो। कृष्ण ने कहा वैसे तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्व कला विशारद हूँ, 64 दिन में 64 कला सीख गया, परंतु मान करना मुझे नहीं आता है। तुम जैसे रूठती हो तुम्हारी तरह रूठना मुझे नहीं आता है, तो मुझे तुम रूठना सिखाओ, मैं तुम्हें बंसरी बजाना सिखा दूंगा, दोनों एक दूसरे के गुरु बन जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा बंसरी बजाना कोई मुश्किल नहीं है, 12 छिद्र होते हैं सारे गामा इत्यादि, कैसे किस छिद्र को बंद करना है शुरू करना है 5 मिनट में सिखा दूंगा, लेकिन ये जो मान करना है रूठने की जो लीला है इसमें सीखना बहुत ही टाइम टेकिंग मैटर है, इसलिए ये पहले मुझे सिखाओ। राधा रानी ने कहा कृष्ण इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। कृष्ण को एक पत्थर के ऊपर बिठाया, राधा रानी गुरु बन गई। राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण देखो जिस व्यक्ति से हमें रूठना है, जिस व्यक्ति से मान करना है, वह व्यक्ति यदि तुम्हें बुलाए तो उसके सामने देखना नहीं है और उसकी बात को सुनना नहीं है। कृष्ण ने कहा बस इतनी सी बात। राधा रानी ने कहा चलो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। कृष्ण को कहा आप मुड़कर बैठ जाओ और मैं तुम्हें बुलाऊंगी। कृष्ण मुड़कर बैठे और राधा रानी ने कहा प्रेम से कृष्ण जरा मेरे सामने तो देखो। कृष्ण घूमकर कहे बोलो राधे क्या काम है। राधा रानी ने कहा ये तो बिल्कुल बुद्धू है। राधा रानी कहा मैंने कहा ना तुमको कि जिसे रूठना है उसके सामने देखना नहीं है और उसकी बात को सुनना नहीं है। कृष्ण ने कहा ठीक है अब की बार मैं ठीक से करूंगा। कृष्ण मुड़कर बैठ गए। यहां पर राधा रानी बुलाने लगी कृष्ण कृष्ण मेरे सामने तो देखो। कृष्ण ने नहीं देखा। दूसरी बार कहा कृष्ण जरा मेरे सामने तो देखो। नहीं देखा। तीसरी बार जब राधा रानी ने कहा कृष्ण जरा मेरे सामने तो देखो, कृष्ण नहीं रह सके, घूम कर कहे बोलो राधे क्या काम है। राधा रानी ने कहा ऐसा चेला मुझे नहीं चाहिए, तुम भागो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकती हूँ। कृष्ण ने कहा लास्ट ट्राई, एक ट्राई मुझे दो, अब तो मैं आपका शिष्य बनकर दिखाऊंगा। राधा रानी ने कहा देखो जिससे मान करना है उसके सामने देखना नहीं है और उसके सामने बोलना नहीं है। वास्तव में ये सब पुरुषों के लिए बहुत हार्ड है, माताओं के लिए बहुत ईजी है। सबको अनुभव होगा। बेचारे पुरुष यदि चाहे भी मान करना बेचारे नहीं कर सकते, स्वभाव में ही नहीं है। राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि अब लास्ट ट्राई। कृष्ण कहा ठीक है। कृष्ण घूम गए। राधा रानी कृष्ण को बुलाने लगी कृष्ण जरा देखो, कृष्ण जरा मेरे सामने तो देखो। कृष्ण मेरे सामने तो देखो। अब राधा रानी बुलाती रहेगी, कृष्ण तुम तो मेरे प्राण प्रिय हो, यदि तुम मेरे सामने नहीं देखोगे तो मैं अभी प्राण को त्याग दूंगी। कृष्ण मेरे सामने देखो, कृष्ण मेरे सामने देखो। कृष्ण ने सामने नहीं देखा और यहाँ पर राधा रानी को लगा कि कृष्ण सचमुच रूठ गए हैं। जब कुछ आधे घंटे तक कृष्ण ने सामने नहीं देखा तब तो कृष्ण मेरे सामने देखो कहते हुए राधा रानी ही बेहोश होकर गिर गई, धड़ाम करके गिर गई। कृष्ण ने देखा कहा लो ये तो गुरुजी ही बेहोश होकर गिर गए, गुरुजी गिर गए। कृष्ण आए और थोड़ा जल छिड़का, पानी छिड़का और कैसे भी करके राधा रानी को उठाए। राधे उठो उठो, मैंने मान नहीं किया है, उठो उठो। कृष्ण ने कहा कि जब ठीक से नहीं कर रहा था तो मुझे डांट रही थी और जब अच्छी तरह से मैंने करके दिखाया तो बेहोश होकर गिर गई। राधा रानी को कैसे भी करके उठाकर बिठाया और कृष्ण ने इतना ही कहा, देखो राधे राधे केवल आधे घंटे के लिए मैं रूठ गया, तुम बेहोश होकर गिर गई। तुम तो रात रात भर रूठती रहती हो, बताओ मेरी क्या हालत होती होगी। इस प्रकार से राधा और कृष्ण का प्रेम नित्य दिव्य प्रेम है। इस प्रेम को समझने के लिए भी दिव्य बुद्धि चाहिए। इसके पहले बहुत साधना जप करने के बाद ये सब बातें समझ सकते हैं, परंतु यह बातें यदि हम सुनेंगे नहीं तो कैसे हम हमारे कृष्ण के बारे में जान पाएंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण और राधा रानी की परम लीला और परम प्रेम, परंतु और इस प्रेम को गाढ़ करने के लिए कृष्ण और राधा का विरह हो गया। ब्रज में 11.5 वर्ष तक राधा रानी के साथ रहे, परंतु अक्रूर जी आए और कृष्ण को मथुरा लेकर चले गए और कृष्ण फिर मथुरा से वापस कभी नहीं लौटे और फिर मथुरा से वे द्वारका चले गए। द्वारका में 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, लेकिन जो आनंद एक राधा रानी के साथ आता था वह 16,108 रानियों के बीच में कृष्ण को नहीं आया। किसी भी बात की कमी नहीं थी। कृष्ण यदि एक बार कहे कि मुझे पानी का ग्लास चाहिए, 16,108 रानी आकर 16,108 ग्लास उनके सामने खड़ा रह जाता था। सोने की द्वारका थी, पूर्ण ऐश्वर्य में वे रह रहे थे, परंतु फिर भी राधा रानी को नहीं भूल रहे थे। नित्य कृष्ण के आंखों में आंसू, राधा रानी के विरह में बलि जाओ सदा इस नयन पे, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं तड़पता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। हे राधे तुम्हारे वियोग में मैं दिन रात रोता रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण एक ही प्रार्थना करते थे, हे राधे हे ललिते विशाखे, कौन कियो अपराध तिहारो, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है कि तुमने मुझे वृंदावन से बाहर कर दिया, यहां पर मैं बहुत दुख झेल रहा हूं। कृष्ण बहुत दुखी थे और उद्धव जी को भेजा कृष्ण ने मथुरा में, जब थे उद्धव जी को भेजा, लेकिन उद्धव जी और कृष्ण जितने दुखी यहां पर थे उतने ही दुखी ब्रज में राधा रानी और इत्यादि सब गोपियां। एक छोटी सी झलक मैं आपको दे दूं, समय नहीं है हमारे पास, समय ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी समय का अतिक्रमण करते हुए 5 मिनट में आपको कह दूं कि कृष्ण के विरह में क्या स्थिति थी ब्रज वृंदावन की। जब उद्धव जी ब्रज में आए और ब्रज में आकर पूछने लगे कि नंद और यशोदा का घर कहां पर है, तो उस गांव वालों ने कहा कि उद्धव जी नंद और यशोदा का घर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहते हैं कि ये नाला जो बह रहा है ना, इस नाले को पकड़कर आप चले जाओ, ये नाला जिस घर से निकलता है वही घर नंद और यशोदा का है। उद्धव ये नाला साधारण पानी का नाला नहीं है। जिस दिन से कृष्ण इस ब्रज को छोड़कर चले गए हैं उस दिन से नंद और यशोदा के आंख से आंसू नहीं सूखे हैं और नंद और यशोदा के आंसू ही यह नाले के रूप में बह रहा है। इस प्रकार से नंद और यशोदा दुखी जब गोपियां उद्धव जी को मिली तो उद्धव जी ने कहा कि क्यों कृष्ण के विरह में तुम दुखी हो, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तब गोपियां कहती हैं, कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी सिंह निपे बज ब्रज में तिहारी कला नैकु ही खटे नहीं। हे कृष्ण, ये जो परमात्मा का ज्ञान जो है यह ज्ञान तुम पर्वत के ऊपर जाकर फेंक दो, ज्ञान का पोटला फेंक दो, ये ज्ञान की दाल यहाँ पर नहीं गलेगी। क्योंकि रसना हमारी चारों चात की बनी है उदो पीपी की बिहाई रटे ही रटे नहीं। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरे हुए जल को ही ग्रहण करता है। अब जानते हैं चातक नाम का पक्षी है, स्वाति नक्षत्र में जब पानी गिरता है तो उस पानी को डायरेक्ट अपने मुंह में लेता है और जब तक वह पानी नहीं आता है तब तक वह इस संसार का साधारण पानी पीता नहीं, मर जाता है। उस स्वाति नक्षत्र के बूंद के वियोग में मर जाता है परंतु और पानी नहीं पीता है। ठीक उसी प्रकार गोपियां कहती हैं, जिसे चातक स्वाति नक्षत्र के पानी को ही ग्रहण करता है वैसे हमारी जीवा और हम केवल कृष्ण को ही चाहती हैं और कोई ज्ञान और परमात्मा की इच्छा हमें नहीं। इस प्रकार से ब्रज में भी दुखी, कृष्ण भी दुखी और कृष्ण इतने दुखी हुए और राधा रानी के विरह में कृष्ण बहुत दुखी रहते थे। उन्हीं दिनों एक समय की बात, 16108 रानियों को मन में प्रश्न हुआ कि कृष्ण वृंदावन में ऐसी कौन सी लीला कर रहे थे ताकि वे वृंदावन के वियोग में इतने दुखी हैं। 16108 रानियों ने बलदेव जी की माता रोहिणी को चुना यह कथा सुनने के लिए। तो एक बार एक कमरे में रोहिणी जी 16108 रानियों को कथा सुना रही थी और रोहिणी ने कहा कि यह कथा ध्यान रहे कृष्ण न सुनने पाए, यदि कृष्ण यह कथा सुन लेंगे तो वृंदावन चले जाएंगे। इसलिए उस कमरे के दरवाजे के ऊपर कृष्ण की बहन सुभद्रा जी को बिठाया गया और कथा प्रारंभ हुई। कथा रोहिणी जी ने प्रारंभ की और यहाँ पर कृष्ण और बलदेव जी घूमते घूमते उस द्वार पर आए और देखा कि बहन जो है दरवाजे के बाहर बैठी हुई है। पूछा सुभद्रा को कि बहना ये क्या हो रहा है अंदर? सुभद्रा जी ने कहा चुप रहो, कहने के लिए ना कहा है। तब तो कृष्ण ने और कहा बताओ क्या हो रहा है अंदर। कृष्ण सुभद्रा जी ने कहा चुप रहो, अंदर तुम्हारी लीला की कथा हो रही है। अब कृष्ण तो जहां पर कृष्ण की लीला होती है वहां पर कृष्ण तुरंत पहुंच जाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान को पूछा प्रभु आपका कोई अता पता है, एड्रेस आपका जरा दीजिए ताकि आपको मिलना हो तो कोई अच्छा पड़े। तो नारद जी ने कहा क्या आप वैकुंठ में रहते हैं? भगवान ने कहा ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो नारद जी ने कहा कि योगियों के हृदय में रहते होंगे। भगवान ने कहा नच मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, योगी नाम हृदयेशु। तो फिर कहां रहते हैं? भगवान ने कहा यत्र गायन्ति मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरी लीला की कथा करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, वहां पर मैं रहता हूँ। भगवान तुरंत वहां सुभद्रा जी के पास पहुंच गए और अपना कान लगाकर अपनी ही कथा सुनने लगे। तो एक और कृष्ण बैठे, बीच में सुभद्रा जी बैठी और बीच में बलदेव जी बैठे हैं और तीनों अपनी लीला सुनने में इतने मग्न हो गए। भगवान को अपनी लीला सुनने में इतना आनंद आता है। बात मत पूछो। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दूं। आप एक कमरे में बैठे हो और कमरे के बाहर यदि कोई चर्चा करे कि ये प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनकी वाणी बहुत मधुर है, यदि आपकी चर्चा हो रही है तो आपका कान सुनना चाहेगा। अरे मेरे बारे में बात हो रही है तो आप जाकर सुनोगे कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हमारा स्वभाव है हम उस भगवान के अंश, भगवान का भी ऐसा ही स्वभाव। भगवान सुनने लगे और सुनते 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 इतने भाव में आ गए, इतने भाव में आ गए, भाव विभोर हो गए। और भगवान अपनी लीला सुनते सुनते इतने अष्ट सात्विक विकार आए, भगवान का हाथ सिकुड़ने लगा, भगवान का जो हाथ था वे अंदर चला गया, बलदेव जी सुभद्रा ये तीनों का हाथ और पांव अंदर चला गया। जैसे कभी कभी हमें ठंड लगती है तो हमारे हाथ भी ऐसे सिकुड़ जाते हैं, हम सिकुड़ लेते हैं, जैसे कछुआ अपने अंग को सिकुड़ लेता है, वैसे भगवान का हाथ अंदर चला गया, भगवान का पांव अंदर चला गया और अपनी लीला को सुनने में भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जैसे हम कोई आश्चर्यचकित बात सुनते हैं तो आंखें फट जाती है, ऐसा हुआ भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर चला गया और पांव अंदर चला गया, और ऐसा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का ऐसा स्वरूप हो गया। और उस वक्त नारद मुनि वहां से गुजरे। नारद मुनि द्वारका में ही पड़े रहते थे। नारद मुनि ने भगवान के इस रूप को देखा और नारद मुनि इस रूप को देखकर नाचने लगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। नारद मुनि नाचने लगे, अरे भगवान का आज नए रूप का दर्शन हुआ। नारद मुनि कृतार्थ हो गए। और जब यह लीला समाप्त हो गई तब नारद मुनि भगवान को प्रार्थना प्रणाम किए और प्रणाम करके भगवान को कहे, प्रभु आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगा हूँ, परंतु आज मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहिए? नारद मुनि ने कहा, प्रभु आपने यह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रूप का दर्शन जो मुझे करवाया, यह दर्शन कलयुग में आप सभी जीवों को करवाइए। मैं चाहता हूं कि कलयुग में सभी लोग आपके इस रूप का दर्शन करें। भगवान ने कहा, नमे भक्ता प्रणश्यति, मैं मेरे भक्तों की सभी इच्छा को पूर्ण करता हूं। और भगवान ने कहा कि कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा इस संसार में मेरा प्राकट्य होगा कलयुग के प्रारंभ में, और इस संसार के लोग मुझे जगत के नाथ जगन्नाथ का नाम लेकर मेरी पूजा करेंगे और मेरा दर्शन करेंगे। और पुरुषोत्तम क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में मेरा बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जाएगा और उस मंदिर में सर्वप्रथम पूजा ब्रह्मा जी करेंगे और तत्पश्चात इसके बाद परंपरा में इसकी पूजा चलेगी। तो इस प्रकार से नारद मुनि को वरदान दिया। भगवान के उसी वरदान के कारण भगवान का जो रूप हुआ था वही रूप इस कलयुग में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रूप में है। तो प्रश्न होता है, जगन्नाथ जी का यह रूप क्यों हुआ? जगन्नाथ जी का ऐसा रूप इसलिए हुआ, श्रीमती राधा रानी की लीला, अपनी और श्रीमती राधा रानी की लीला सुनते सुनते भगवान का रूप ऐसा हो गया। श्रीमती राधा रानी के विरह में भगवान का रूप ऐसा हो गया, इसलिए जगन्नाथ जी को शास्त्रीय भाषा में राधा विरह विदुर कहा जाता है और चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रीय भाषा में कृष्ण विरह विदुर कहा जाता है। तो जगन्नाथ जी का रूप इस प्रकार से प्रकट हुआ। जगन्नाथ जी और कोई नहीं, जगन्नाथ जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य स्वरूप जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी को देखकर भगवान की समस्त लीला और खास करके राधा रानी के साथ जो लीला है, यह लीला याद आती है, क्योंकि राधा रानी के विरह में ही जगन्नाथ जी का ऐसा रूप हुआ है। तो यह जगन्नाथ जी का कलयुग का यह रूप है और इसे जगन्नाथ जी के रूप में हम सबको पूजना चाहिए। प्रति वर्ष में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, परंतु प्रभुपाद जी की कृपा से यह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश विदेश में सभी देशों में आज हो रही है। पुणे में, चाहे बंबई में, चाहे अमेरिका में, चाहे ब्राजील में, लंदन में, सभी जगह पर जगन्नाथ जी पहुंच गए हैं। सब लोग भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो हम सबको भी भगवान श्री कृष्ण का, जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए और उनका नाम लेते हुए हमें हमारा जीवन बिताना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।